लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अर्थ याचना करते हैं कि विश्व के समस्त राष्ट्र और नागरिक हथियारों के उपयोग को कम कर शांति और अहिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, जो इस धरती पर आया है उसे अपने में वापस जाना है, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि यही प्रकृति का एक नियम है। मानव जीवन के संदर्भ में हम इसे उस स्थिति में लौटना कहेंगे जहां से हम आए हैं, और हम आए वहां से हैं जहां से जीवन दाता ने हमें अपने कार्यों के लिए यह जीवन देकर भेजा है। अतः अपने इस जीवन के खत्म होने को हम मृत्यु की संज्ञा देते हैं, जहां भौतिक प्राणी के रूप में हम अपने मरणशील शरीर को छोड़ते हैं। मृत्यु हमारे लिए इस भांति आत्मा का शरीर से निकलना है, और इस तरह आत्मा जो हमारे लिए जीवन का कारण है अपने उस स्थान को लौटकर जाती है जहां से वह आई है। हमारा निवास इस पृथ्वी पर इस भांति क्षणिक है। हम सभी भेजे गए हैं जिससे हम अपने जीवन के द्वारा उनके कार्यों को पूरा करें जिन्होंने हमें यह जीवन देकर भेजा है। श्रोताओं, आज माता कलीसिया प्रभु के स्वर्गारोहण का त्योहार मनाती है, जहां हम इस बात की याद करते हैं कि ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह अपने उस अनंत निवास अपने स्वर्गीय पिता के घर में वापस उठा लिए गए, जहां से वे सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए भेजे गए थे। वे पिता के कार्यों को पूरा करने हेतु दुनिया में भेजे गए थे, और उन्होंने उस कार्य को अपनी निष्ठा में पूरा किया। वे अपने उन्हीं कार्यों की जिम्मेदारी अपने शिष्यों को देते हैं। आइए हम स्वर्गारोहण महोत्सव की आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि हम अपने जीवन को किस रूप में देखते हैं। क्या हम अपने भेजे जाने के अर्थ को समझते हैं? क्या हम यीशु ख्रिस्त के द्वारा दिए गए पिता के कार्यों को निष्ठामय तरीके से पूरा करते हैं? क्या हम अपने कार्यों में पवित्र आत्मा की प्रेरणा का अनुभव करते हैं?
तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
श्रोताओ, यीशु ख्रिस्त के जीवनदायी वचन हमें अपने जीवन को गहराई से जानने और समझने में मदद करे, जिससे हम इसे अपनी पूर्णता में जीने के योग्य बन सकें, जो हमें न केवल इस जीवन में सच्ची खुशी प्रदान करेगा बल्कि हमें उस ईश्वरीय अनंत राज्य के अधिकारी होने में मदद करेगा जिसके लिए ईश्वर ने हमें जीवन दिया है। श्रोताओ, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए यीशु ख्रिस्त के संग अपने शिष्यों के अंतिम मिलन और विदाई की बात कहता है। यीशु अपने शिष्यों से अंतिम बार मिलते और उन्हें यह निर्देश देते हैं कि उन्हें क्या करना है। वे उन्हें यरूशलेम में उस दिन तक टिके रहने की बात कहते हैं जब तक उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा उन पर पूरी नहीं होती हो, अर्थात पिता ईश्वर से उन पर पवित्र आत्मा के भेजे जाने तक। श्रोताओ, यह हमारे लिए यीशु ख्रिस्त के द्वारा की गई प्रतिज्ञा को प्रकट करता है, जहां वे अपनों को अनाथ नहीं छोड़ने की बात कहते हैं। वे हमारे लिए पवित्र आत्मा के रूप में एक सहायक को भेजते हैं जो सदैव हमारे साथ रहते और हमें अपने जीवन में ईश्वरीय कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ईश्वर के द्वारा दिया गया सहायक हमारे हृदय के अंतरतम में हमें अपने बातों को प्रकट करते हैं। वे हमें उन बातों और चीजों से वाकिफ कराते हैं जो हमारे लिए उचित और आवश्यक हैं। वे हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करते हैं, जहां हम अपने जीवन की राहों को आलोकित होता पाते हैं। हमारे लिए पिता ईश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का आना केवल तब संभव होता है जब हम यीशु को अपने पिता के निवास लौटता हुआ पाते हैं, क्योंकि वे स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं कि जब तक मैं ना जाऊं, पिता के द्वारा सहायक तुम्हारे लिए नहीं भेजा जाएगा। श्रोताओं, इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें पुनः उसी पवित्र आत्मा के दिए जाने की बात कहता है, जो हमारे लिए विवेक, ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं, जिनके द्वारा हम उन अज्ञात बातों को समझते और जानते हैं जिसे पिता ईश्वर ने अपनी सर्व शक्ति मता में हमारे लिए अपने बेटे यीशु ख्रिस्त में प्रकट किया है। पवित्र आत्मा हमारे बुलाए जाने के अर्थ, अर्थात हमारे मानवीय जीवन के रहस्य को हमें जानने और समझने में मदद करते हैं, और हमारे जीवन का वह रहस्य स्पष्ट रूप में आज के सुसमाचार में प्रकट किया गया है। श्रोताओ, आज के सुसमाचार में हमने अपने को दुनिया में भेजे जाने की बात सुनी। स्वर्गारोहण के पहले यीशु इसे अपने शिष्यों को यह कहते हुए प्रकट करते हैं, उन्हें स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारी चीजों में अधिकार मिला है। अपने शिष्यों को भेजने के फलस्वरूप वे हम सबों को अपने अधिकार के संग साझा करते हुए दुनिया के राष्ट्रों में भेजते हैं, जिससे हम त्रित्वमय ईश्वर के नाम की घोषणा कर सकें। इस भांति यदि देखा जाए तो किसी भी मानव का जन्म इस धरती पर यूं ही नहीं हुआ है, बल्कि हम में से हर कोई बुलाए, चुने और भेजे गए हैं, और हमारा यह भेजा जाना पिता के द्वारा पुत्र को दिए गए प्रेरितिक कार्य में हमारी सहभागिता को व्यक्त करता है। पिता ने पुत्र को अपने कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने अपने पिता के प्रति निष्ठा में बने रहते हुए उन कार्यों को पूरा किया। वही पुत्र ईश्वर अपने पिता के घर लौटने के पूर्व अपने उन्हीं कार्यों को जारी रखने की जिम्मेदारी हमें सौंपते हैं। वे हमें इस दुनिया में अपने पिता की शिक्षा, प्रेम, क्षमा और करुणा के जीवन को, जिसे उन्होंने स्वयं जिया और हमें सिखलाया, हमें पालन करने को कहते हैं। वे अपनी उस शिक्षा को दूसरों के संग बांटने की आज्ञा देते हैं। इतना ही नहीं, वे हमें इस बात का आश्वासन देते हैं कि वे दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहते और हमें अपने कार्यों में मदद करते हैं। श्रोताओं, हम अपने जीवन में हताश और निराश हो जाते क्योंकि हम दुनिया में अपने भेजे जाने के अर्थ को सही रूप में नहीं समझते हैं। हम अपने जीवन के कार्यों को सिर्फ अपना कार्य मात्र समझकर पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए चिंता, परेशानी और दुख का कारण बनती है। आइए हम अपने उस सहायक पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें अपने विवेक से भर दें, जिससे हम अपने जीवन के सार को जान और समझ सकें, जो हमें अपने दैनिक जीवन की सारी चीजों को उस ईश्वरीय नाम की महिमा में पूरा करने को प्रेरित करेगा, जिसके लिए ईश्वर पिता ने हमें यह जीवन दिया है।
जीवन जिसने दिया, ये जीवन है उसका।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। शनिवार की सुबह संत पापा फ्रांसिस ने जेनेवा महाधर्म प्रांत के लगभग 1000 युवाओं से मुलाकात की। संत पापा के आवास संत मार्था के प्रांगण में बैनर हाथों में लिए संत पापा फ्रांसिस का बड़े धूमधाम और उत्साह पूर्वक युवाओं ने अभिवादन किया। संत पापा ने युवा कैथलिकों को धन्य माता मरिया से प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें दूसरों के खिलाफ बुरा बोलने और गपशप के खिलाफ भी चेतावनी दी। संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें रोम में अपने समय का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्हें लड़ने के खिलाफ चेतावनी दी, यह याद दिलाते हुए कि लड़ाई शैतान से आती है। संत पापा ने नौजवानों को धन्य माता मरियम से प्रार्थना करने और प्रणाम मरियम की प्रार्थना में उनके साथ शामिल होने का आग्रह करते हुए अपने संवाद को समाप्त किया। और संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 20 मई को वाटिकन के संत पापा पोल षष्ठम सभागार में स्पोलेतो नोर्चा महाधर्म प्रांत के करीब 2500 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की, जो स्पोलेतो की माता मरियम के स्वर्गरोहण महागिरजा घर के समर्पण की सालगिरह में रोम की तीर्थयात्रा पर हैं। संत पापा ने वाटिकन में उनका सहृदय स्वागत करते हुए कहा कि माता मरियम का स्वर्गरोहण महागिरजाघर बहुत ही सुंदर है, इसकी सुंदरता आकर्षित करती है। मैं आपको सुंदरता के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास का संचार करना सबसे बढ़कर सुंदरता का विषय है, लेकिन सुंदरता की व्याख्या नहीं की जा सकती, वह खुद को दिखाती है। किसी को सुंदरता के बारे में आश्वस्त नहीं किया जा सकता है, उसे इसकी गवाही देनी चाहिए। आपका विशाल महागिरजाघर जीवन और विश्वास की कहानियों को रखता है, जिसमें पवित्रता और सुंदरता है। बेशक यह एक सौंदर्य है जिसकी तलाश की जानी चाहिए, जिसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए, जैसा कि एक मरम्मत करने वाला एक प्राचीन फ्रेस्को के रंगों को फिर से खोजता है। महागिरजा घर में जो दिखता है उससे ज्यादा कीमती है प्रार्थना, गुप्त रूप से किया गया दान, क्षमा की ताकत जो शायद पहला पन्ना नहीं बनाती, इसी तरह पुरोहितों के बलिदान, इतने सारे लोगों का जीवन, माता पिता, परिवारों और बुजुर्गों की गवाही। आप सुंदरता के खोजकर्ता बने, विश्वास के खजाने के साधक बने। चीजों के बाहरी सुंदरता तक ही अपने आप को सीमित न रखें, बल्कि उससे परे देखें, पवित्रता और सेवा की विरासत की सराहना करें, जो कि कलीसिया की समृद्धि है। उधर हिरोशिमा के धर्माध्यक्ष को लिखे पत्र में, जहां G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है, संत पापा फ्रांसिस ने वैश्विक सुरक्षा की एक अभिन्न दृष्टि और समानता एवं एकजुटता पर आधारित शांति की खोज की अपील की है। संत पापा फ्रांसिस ने परम धर्म पीठ के दृढ़ विश्वास को दोहराया और परमाणु हथियारों का उपयोग मानवता के खिलाफ एक अपराध है और यह हमारे आम घर के लिए किसी भी संभावित भविष्य को कमजोर करता है। हिरोशिमा के धर्माध्यक्ष शिराहामा को लिखे पत्र में संत पापा ने कहा कि वे प्रार्थना कर रहे हैं कि शिखर सम्मेलन दीर्घकालिक स्थायी सुरक्षा और स्थायी शांति एवं स्थिरता की नींव रखने में दूरदर्शी दृष्टि का प्रदर्शन करेगा। संत पापा ने परमाणु हथियारों के निरंतर खतरे के आलोक में बैठक के लिए एक विकल्प के रूप में हिरोशिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि मेरी 2019 की जापान यात्रा के दौरान शांति स्मारक में मेरी यात्रा जबरदस्त छाप छोड़ी है। जब वे मौन प्रार्थना में खड़े थे और दशकों पहले परमाणु हमले के निर्दोष पीड़ितों के बारे में सोच रहे थे, उस अवसर पर उन्होंने परम धर्म पीठ के दृढ़ विश्वास को दोहराया कि युद्ध के प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग आज से पहले कहीं अधिक न केवल मानवीय गरिमा के खिलाफ अपराध है, बल्कि हमारे आम घर के लिए किसी भी संभावित भविष्य के खिलाफ है। संत पापा ने इस बात पर भी विचार किया कि आज हम किस प्रकार भविष्य की चिंता करते हैं, विशेष रूप से वैश्विक महामारी और यूक्रेन में लड़े जा रहे युद्ध सहित विभिन्न क्षेत्रों में जारी युद्धों के मद्देनजर। उन्होंने लिखा, पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल एक साथ बंधुत्व और एकजुटता में हमारा मानव परिवार घावों को भरने और एक न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करने की कोशिश कर सकता है। संत पापा ने धर्माध्यक्ष शिराहामा और धर्म प्रांत दोनों के लिए प्रार्थना और आशीर्वाद के आश्वासन के साथ पत्र समाप्त किया। उन्होंने कहा कि वह उनके साथ प्रार्थना में शामिल है कि हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन स्थायी शांति और स्थिर एवं दीर्घकालिक स्थायी सुरक्षा की नींव रखने में दूरदर्शी दृष्टि प्रदर्शित करेगा। और संत पापा फ्रांसिस ने 3 पुरोहितों, 2 धर्म बहनों, 3 लोक धर्मियों और 1 सेमिनारियन को संत घोषणा के रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए उनकी आज्ञाप्तियों को मान्यता प्रदान की। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार को वाटिकन के संत प्रकरण परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो के साथ एक मुलाकात में 9 नए उम्मीदवारों की आज्ञाप्तियों को अनुमोदन देते हुए उन्हें संत घोषणा के रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए ईश सेवक का सम्मान प्रदान किया। नए ईश सेवकों के नाम इस प्रकार हैं: इटली के ईश सेवक शहीद जुसेपे बायोटी, धर्म प्रांतीय पुरोहित; बाटोम्बे कैमरून के ईश सेवक साइमन मेकेपे, धर्म प्रांतीय पुरोहित; पेमलीगा स्पेन के ईश सेवक पेड्रो डेल्ला वर्जिने डेल कार्मेन; पवित्र स्कूलों के ईश्वर की माता के नियमित गरीब पुरोहितों के धर्म संघ के पुरोहित; इटली की ईश सेविका एड्डा रोडा, मदर रुबातो की कपुचिन सिस्टर संस्थान की धर्म बहन; ईश सेविका तेरेजा मार्गरीदा दे कोराओ का, कार्मेलाइट धर्म समाज की धर्म बहन; इटली के ईश सेवक ओर्नाल्डो कैनेपो, लोक धर्मी और प्रचारक; वोल्टा रेडोडा ब्राजील के ईश सेवक गुइदो विदाल फ्रांका शॉफर, एक सेमिनारियन; ईश सेविका मरिया क्रिस्टीना ओगेरियन, एक लोक धर्मी; और रोम इटली की ईश सेविका लोरिना डी अलेसांद्रा, एक लोक धर्मी थी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।